आज हम श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय छठा पुरुष सूक्त की पुष्टि के शीर्षक भगवान जो विराट रूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट होते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के जो संयोजक तत्व हैं, तीन गुण रज सत्व रज तमो से बने हुए, तो इनमें से जो जो भगवान की दृष्टि से विकार पैदा होते हैं उसमें सूक्ष्म में से स्थूल तत्व पैदा होते हैं, तो इन तत्वों का स्वरूप बनता है, ये विराट स्वरूप कहलाता है। तो ये विराट स्वरूप में जो जो क्रियाएं भगवान की शक्ति के द्वारा पैदा होगी, तो ये क्रिया के नियामक देवतागण जो अभी तक पैदा नहीं हुए लेकिन सूक्ष्म रूप से सृष्टि के प्रारंभ में वो विस्मृति में रहे हैं। जब सृष्टि का लय होता है तो सारे जीवात्माएं अपने सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं, क्योंकि लय में तो ये पंच महाभूत तत्व तो विलीन हो जाते हैं, शरीर छूट जाता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर चालू रहता है। इस सूक्ष्म शरीर अभी प्रकट नहीं कहलाता है, लेकिन यहां अभी सारी सृष्टि का पुनः प्रगतिकरण हो रहा है। तो इन तत्वों के माध्यम से ब्रह्मा जी विराट पुरुष की ही सर्वप्रथम प्रस्तुति करके उनके द्वारा इनको प्रार्थना करके शक्ति प्रदान करते हैं जो वो विसर्ग कर सके, सृष्टि का आगे प्रजोत्पत्ति में बढ़ावा दे सके, ये काम ब्रह्मा जी का है। तो अभी ये विराट पुरुष की सारी प्रशस्ति पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा की जाती है। तो पुरुष सूक्त मंत्र बहुत ब्राह्मणों के लिए वैष्णवों के लिए अपनी सृष्टि, यानी कि हम हैं, हम पैदा हुए हैं, शरीर में हैं, तो हमें याद दिलाने के लिए हमेशा इनका उपयोग करते हैं कि हम ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के तत्वों से बने नहीं, हम वास्तव में भगवान के अंश होने के नाते इन भौतिक तत्वों में हम कैसे फंसे, कैसे छुपे इत्यादि के लिए मनुष्य जन्म में हमें सोचने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत महत्व के जो ये पद्धति वैदिक पद्धति से अपने आत्मा को जगाकर नहीं रखता है, अपनी मूल स्थिति सनातन अवस्था भगवान के साथ हमेशा भगवान की निरंतर सेवा में जो बनी रहनी चाहिए, वो अपनी उल्टी इच्छा से हमने इस भौतिक जगत में लाने के लिए जिम्मेदार ठहरे हैं, वो भगवान सर्वप्रथम हमें ही जिम्मेदार बना देते हैं, और हम भगवान के विरोधी होने के कारण भगवान को सब सारी बाबतों में जिम्मेदार बनाते हैं, देखो तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। लेकिन भक्ति में भगवान का हम कोई गुना नहीं निकालते, गुना हमारा निकालते, क्योंकि यदि हम अपना गुना नहीं निकाले तो हमारी दिव्यता भी प्रकट नहीं हो सकती, सही ना। तो ब्रह्मा जी एक पुरुष सूक्त द्वारा भगवान की प्रशस्ति करके सृष्टि के जो सर्व कारण कारण के रूप में भगवान कैसे विराट रूप धारण करते हैं, तो इसकी यहां प्रशस्ति हुई है। ये पुरुष सूक्त की पुष्टि यानी कि प्रमाण देने के लिए श्रीमद् भागवत में इनका विस्तृत रूप से सुखदेव गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं। तो इस आज के श्लोक में हम ये 18वां श्लोक है। सह अमृतस्य अभयस्य ईशः मर्त्यं अन्नं यत् अत्यगात् महिमा एषः ततः ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः सोमृत्यास्य भयशेषो मर्त्यमन्नं यत्यतगात् महिमेष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः सोमृत्यस्याभयस्पेशो मत्यमन्नं यदत्यगात् महिमेष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः सोमृतस्याभयशेषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमेष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। एक प्रभु जी और एक माता जी श्लोक का उच्चारण।
सोमृतस्याभयशेषो
मर्त्यमन्नं यदत्यगात्
महिमेष ततो ब्रह्मन्
पुरुषस्य दुरत्ययः
माता जी सह वह भगवान अमृतस्य अमरता का अभयस्य निर्भयता का ईशः नियंता मर्त्यं मरणशील अन्नं सकाम कर्म यत् जो अत्यदात् पार कर गया महिमा यश एषः उसका ततः अत एव ब्रह्मन् हे ब्राह्मण नारद पुरुषस्य परम पुरुष का दुरत्ययः अमात्य। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं। वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। इसलिए हे नारद हे ब्राह्मण परम पुरुष के यश का अनुमान लगाना पाना कठिन है। भगवान की अंतरंग शक्ति का दिव्य 75% भगवान का यश है। जिस वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड में हुआ उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित रूप भगवान की बहिरंगा शक्ति से समुचित संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूपों से कहीं अधिक विशाल है। चैतन्य चरितामृत में भगवान की बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों के प्रत्येक बीज अपने में से एक ब्रह्मांड जैसा होता है। इनमें से एक ब्रह्मांड में जिसमें हम अब रह रहे हैं लोगों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति के परे है, तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों की तुल्य है। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में लोगों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। ऐसे लोग आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सतोगुण से बने हुए होते हैं। इन लोगों में ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। इनमें से प्रत्येक लोग स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से यदि हम अनुमान लगा सके तो कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। इन लोगों के निवासी जन्म मृत्यु तथा जरा और रोग से मृत्यु मुक्त होते हैं और उन्हें हर एक वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेमात्मयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता। जो ऐसे वैकुंठ लोक के प्रमुख श्री विग्रह हैं, वे मुक्तात्माएं सामवेदों के गीत के गायन में निरंतर व्यस्त रहती हैं। वे सांग पदक्रमोस उपनिषद ही गायंतियम सांगा। ये सब पांचों उपनिषद के साक्षात रूप हैं, त्रिपाद विभूति जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है। भगवान का वह धाम है जो भौतिक आकाश से बहुत परे है, किंतु जब हम पाद विभूति की बात करते हैं तो भगवान की बहिरंगा शक्ति का 25% होता है। भौतिक जगत के गोलोक को द्योतित करता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है, किंतु पाद विभूति अनित्य है। इस दिव्य साम्राज्य ध्यान या धम में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं। वे शुभ अच्युत आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं होते। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद सौंदर्य तथा सुख से पूर्ण रहता है। इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में भी होता है और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है, जैसा कि वेदों में वर्णित है, उतामृतत्व शेषान, परमेश्वर अमृतत्व के स्वामी है। दूसरे शब्द में भगवान अमर है क्योंकि वे अमरत्व के स्वामी हैं, अतः ये तो अपने भक्तों को अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी भगवान यही विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमरत्व धाम को जाता है वह फिर कभी तापमय मर्त्य लोक में नहीं लौटता। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो न कभी अपने अधीनस्थ को साथ समभाव से भोग करता है, न अमर होता है, न अपने अधीनस्थ को वह अमरत्व प्रदान कर सकता है। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर ने अपने भक्तों के सारे गुण प्रदान कर सकते हैं जिनमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदय में सदैव चिंता या भय सवार रहता है, किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है क्योंकि सारे जीव जन्म मृत्यु जरा तथा एक रोग से सदा भयभीत रहते हैं। इस जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती है और जो जीव मूलतः अविकार होता है वह समय के प्रभाव से काफी परिवर्तित हो जाता है, किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है, किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है आनंदमयोभ्यास, आत्मा स्वभाव से सुखमय है। आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता रहता है। इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे अनन्य आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं प्राप्त नहीं है, यहां तक कि जनलोक में या महलोक या सत्यलोक में भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि दुरत्यय, या दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते। जो स्वर्ग से परे लोगों को प्राप्त करने के पात्र है अथवा परमेश्वर इतने महान है कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी तक नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही सुख की जंतना करना होता नहीं तो कहीं भी तृप्ति नहीं। ओम अज्ञान विरंदस्य ज्ञानंजन शराया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकान्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारिजातं सारणार्जुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सजनालिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद ने भगवत धाम में रहने वाले सारे नित्य मुक्त आत्मा के स्वभाव का वर्णन किया है, उनके चरित्र का वर्णन किया है और उनके कार्यकलापों में भगवत प्रेम का भी वर्णन किया है। ऐसी परव्योम यानी कि आध्यात्मिक जगत की ये प्रशस्ति ये श्लोक में पूरे पूरी भरी। भला कोई भी भगवत भक्त चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो भक्ति में जुड़ा है इसलिए कि उसे ऐसे सुख की प्राप्ति हो। बहुत बार हम सुन चुके हैं कि ये संसार अनित्य है, दुखमय है, यहां कोई सुख की बिंदु भी नहीं मिलती, या यदि कुछ दूसरों के सुख को हम देखकर ये देखते हैं कि हाँ देखो कितना पागल होकर अपने आप को सुखी मानता है, लेकिन ये सुख की आचार्यों ने यही बताया है कि तातले वाली बिंदु सुत मित रमणी समाजे। तातल यानी बहुत धकधकता रेगिस्तान होता है जहां गरम गरम बाल पांव रखो तो छाले पड़े, ऐसे गर्म प्रदेश में सभी पानी की बूंद के लिए प्यासे होते हैं क्योंकि सारा शरीर 80% पानी से भरा हुआ है। तो उसे पानी कितना चाहिए? तो यदि वो एक पानी की यदि बूंद यदि प्राप्त करता है, ऐसा संसार का विषयी सुख की कल्पना है। ये सूत्र मित्र रमणी और सारा समाज हमें एक बूंद के अलावा ज्यादा कोई सुख नहीं दे सकता। इसलिए आत्मा जो अमरता अभयता में जो सुख का अनुभव कर रही है आध्यात्मिक जगत में, उसकी तुलना में तो क्या कुछ नहीं है, कुछ। इसलिए संसार का विषय भोग में जो जातीय सुख की बात करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी इतना डांटते हैं। वो कह रहे हैं कि यन्मैथुनादि ग्रहमेदि सुखं हि तुच्छं कण्डूयेन करयोरेव दुःख दुःखं तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजां कण्डूति वा मनसि गं सविशहेत धीरः। जैसे चंडी पर थोड़ा थोड़ी फुर्की हुई हो, उसे संवारते संवारते अच्छा तो लगता है, लेकिन जितना ज्यादा संवारो उतना बढ़ता है। यानी कि वो समझ रहा है कि मैं संवारू तो सुख होगा, ये तो बढ़ाने वाला है, सुख बढ़ाने वाला नहीं, दर्द बढ़ाने वाला। इसीलिए तो भगवान ने भी भगवत गीता में यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो संस्पर्श से जो भोग प्राप्त होते हैं तो दुख की योनि ही है, दुख पैदा करने वाला जन्म स्थान। तो ये भौतिक संसार में सूत यानी कि बेटा, मित्र यानी मित्र, रमणी यानी कि पत्नी या प्रेमिका और सारा समाज हमें कैसी तृप्ति दे सकते? लेकिन भक्ति में देखो, भगवान अमरत्व और निर्भयता दोनों प्रदान करते हैं। अमरत्व क्यों? भक्ति में आत्मा अपने मूल स्वभाव पे आती है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, नित्य अमरता का सूचक है। दासत्व है तो क्या हुआ, गुलाम थोड़े हैं। आनंद के लिए दास बनना, वैसे ही सारे भौतिक जगत में हम आनंद के लिए तो दास बनते हैं, कुत्ते बनते हैं, क्या क्या है। लेकिन भौतिक अज्ञानता से जो जड़ा हुआ अपना अहंकार अपने को पागल बनाता है। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म जगेन्द्रिय प्रीतृण्या न साधु मंदे आत्मनोयम असद अपि क्लेशद आसदे। जब इंद्रियों की वृद्धि के लिए हम पागल होकर विकर्म करते रहते हैं तो क्या ये अच्छा है? क्या आत्मा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। शरीर के लिए हम मानते होंगे अच्छा, लेकिन जब दुख पड़ता है दुख तो आने वाला ही है, बिना बुलाए आएगा। आनंद करते समय हम सोच भी नहीं सकते कि हम दुख को बुला रहे हैं। देखो पराभवस्य बोध जातो जावान्न जिज्ञासा तत्व, इनका हमेशा फेलियर पराभव ही होता है, क्योंकि आत्मा तत्व के बारे में उसे कुछ पता नहीं। अबोध जातो तो जावत क्रिया तावत मनु, जैसा ऐसा उसका कर्म है उसका ऐसा ही मन बनेगा। कर्मात्मकम एव शरीर बंधन, ये कर्म प्रधानता जो है काम करने की, भगवान की शक्ति उधार भी है और हम ये उधार शक्ति को भी फोकट में गवा देते और अनेक अनेक प्रकार के मतांतर में हम व्यस्त रहते हैं। श्रम एव हि जयते, श्रम ये तो गदा भी करता है, क्या उसकी विजय होती है? लेकिन बना देते हैं श्रम ए वही जयते, श्रम करो गदे करो। भगवत भक्त को इतना ही काम होता है जितना शरीर और आत्मा टिके। ज्यादा करने से वो फंसेगा। तो यहां भगवान के भक्त को अमरता और निर्भयता प्रदान करने करते हैं भगवान, ये ऐसी कृपा है। तो ऐसी निर्भयता प्राप्त करके भक्त भगवान की प्रशस्ति कितनी कर सकता है। वैसे सारी भौतिक अवस्था में भी भगवान की प्रशस्ति दिखे तो जो कुछ पैदा हुआ है भगवान की शक्ति से, चाहे अंतरंगा शक्ति से हुआ हो या बहिरंगा शक्ति से हुआ हो, बहिरंगा शक्ति से जो जो कुछ पैदा हुआ है उसकी गणना में अंतरंगा शक्ति से जो जो उपस्थित हैं वो तो तीन गुना बताया है, तीन गुना। इसीलिए त्रिपाद विभूति आध्यात्मिक जगत को कहते हैं, ये भौतिक जगत को एक पाद विभूति या पाद विभूति कहते हैं। पाद यानी चरण, चार चरण का पूर्ण होता है तो तीन चरण तो आध्यात्मिक है और एक चरण ये पृथ्वी सारा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड एक चरण में, भौतिक जगत सारा जिसमें असंख्य ब्रह्मांड। अपने ब्रह्मांड की तो गणना बहुत छोटी, आपने शायद फोटो नहीं देखी होगी, नासा ने आकाशगंगा का जो एक ही गैलेक्सी कहलाती है, ऐसी तो असंख्य गैलेक्सी पड़ी आकाशगंगा को गैलेक्सी कहते। ये आकाशगंगा बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें इतने अगणित तारे ग्रह इत्यादि है और उसमें उन्होंने पृथ्वी का भी निशान लगाया। तो इतनी बड़ी फोटोग्राफ में इतने छोटे 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 बिंदु थे, कहीं अरबों खरबों, जिसमें एक बिंदु पर ये पृथ्वी, यानी कि यहां जो गणना की गई है कि एक बाल्टी भर के हम सरसों के बीज इकट्ठे करें तो शायद एक बीज पृथ्वी हो। तो क्या ये पृथ्वी पर जो जनसंख्या या जीवों की संख्या, इसके लिए हम इतने व्याकुल हो जाते और जनसंख्या बढ़ रही है और हमें खाना नहीं मिलेगा और हमें ये नहीं। ये एक तरफ सुख की भावना करते हैं, दूसरी तरफ चिंता का ढेर लेकर भरते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो तीन गुना है उसमें कितने सारे जीव जो निर्भय होकर सनातन अवस्था में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए कोई परवाह नहीं। इतने बड़े मथुरा शहर में एक जेल तो होगी ना, तो जेल में सोचने वाले कहते हैं कि हमारे जेल में इतनी आबादी बन जाएगी, बहुत सारे कैदी आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अरे भैया मुक्त बंद तो वहां देख कितने लोग रह रहे हैं, सही ना। तो ये हमारे भौतिक अवस्था में जीने वाले आदमियों की सोच, इतनी सोच पहुंच नहीं पाती आध्यात्मिक। भगवद्गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, ये विभूतियों की चर्चा दसवें अध्याय में अर्जुन चाहता कि भगवान इस हरे भौतिक ब्रह्मांड में कैसे अपने आप को व्याप्त करते हैं, कैसे कैसे मैं इनके ऐश्वर्य को पहचानूं, इनके इनको याद करने के लिए मुझे कैसे ऐश्वर्य पर चिंतन करना। तो भगवान ने कहते हैं, अरे भैया ऐसे तो मेरी विभूति अगणित है लेकिन थोड़ी मुख्य मुख्य कहता हूं, जिनमें कहा कि रसो अहम अक्षु कौंतेय प्रभा शशि सूर्यो, मैं पानी में स्वाद हूं और सूर्य और चंद्रमा का तेज में, पानी में स्वाद करते भगवान को याद आता है। लेकिन हम तृप्ति की झंझना करने के पानी के बजाय कुछ नहीं पी सकते, कोको कोला भी नहीं पी सकते। ये तृप्त करने वाली नहीं है। लेकिन पानी में जो स्वाद है, जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक हमें चैन नहीं। ये पानी, पानी का तो शरीर बना है, 80% पानी पड़े हैं। कोई अपने आप को शरीर मानता है तो भैया 80% तो पानी है तू। बाकी के थोड़े तत्व हैं, 20% में तेरा क्या हिसाब। लेकिन आत्मा न तो पानी की है, न तो अन्य जो प्रकट हुए पृथ्वी के तत्वों की। तो कहने का मतलब है, एक छोटा सा मनुष्य भगवान की कल्पना में अपने घोड़े दौड़ाता ही रहता है, दौड़ाता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, उस पर उसका कोई ध्यान ही नहीं जा रहा। कल भी ऐसी ही चर्चा अंग्रेजी अगर क्लास में हुई थी। एक छोटा सा दिमाग कल्पना के घोड़े पर सवार होता है, लेकिन इसकी कल्पना का माध्यम ये पंच महाभूत का तत्व है, प्रापंच की बुद्धि, प्रपंच वाली। यानी कि हमेशा वो प्रपंच में घूमता फिरता रहता है। तो मुक्त कब होगा? प्रपंची लोग पॉलिटिशियन कहलाते हैं, पर प्रपंची लोग भक्त नहीं हो सकते। भक्ति और प्रपंच में बहुत भेदभाव। हमें ये देखना कि जब भक्ति में पड़े हैं तब भक्ति में निर्भयता, अमरत्वता का पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और भगवान प्रदान करते हैं, लेकिन ये अमरत्व और निर्भयता का कोई ऐसा अनुमान लगाकर हम अपनी छोटी बुद्धि से विचार ना करें। भगवान की ये त्रिपाद विभूति के बारे में भी हम दूसरे कल्पना के घोड़े नहीं दौड़ा सकते, अचिंत्य। लेकिन भगवान जब कहते हैं कि ये मेरी त्रिपाद विभूति जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें ही एक छोटी सी भौतिक जगत की एक बार विभूति कहलाती है, 25%। तो 25% वाले ऐसे अपनी मूर्खता के अभिप्राय बताते रहेंगे। मूर्खता, उनका निराधार कथन को हम सत्य कैसे माने? यानी कि जब भक्त, सन्यासी या ब्रह्मचारी, इनको इस बाबत में आश्वस्त होना चाहिए कि हमने जो मार्ग अपनाया है वो अमरता का है और निर्भयता का, दोनों का अनुभव होना चाहिए। गृहस्थी में जरा डर लगता है, लेकिन ब्रह्मचारी भी डरपोक हो जाएगा या सन्यासी भी डरपोक हो जाएगा जब निर्भयता और अमरता पर उसका ध्यान नहीं, भय पैदा होता है और कहीं भी भय सता सकता है। तो यहां भगवान त्रिपाद विभूति और एकपाद विभूति की चर्चा करते हैं, और अर्जुन भी उसी तरह भगवद गीता में हमें ये कहता है। तब भगवान क्या कहते हैं अंत में अर्जुन को, अर्जुन ये सब जानने की आवश्यकता क्या है? अथवा किं बहुना ज्ञाते न तवा अर्जुन विष्टध्याम अहम कृष्णम एकांशे न जगतोस्तु। सारे विश्व में मैं एक अंश मात्र से ही सब चित पैसा, कौन सा अंश? वो परमात्मा, भगवान का आंशिक रिश्ता, लेकिन सब जगह फैला हुआ, इसे परमात्मा। विष्टभ्याम अहम कृष्णम एकांशे न जगतोस्तु, मेरे एक अंश मात्र से ये सारे जगत में व्याप्त है। तो हम छोटी सी पृथ्वी में जहां हमारा भी कोई हिसाब नहीं है। उदाहरण देते हैं, कभी कभी एरोप्लेन में ट्रैवल करने वाले देखें कि वृंदावन से और जा रहा है, लेकिन वृंदावन दिखाई नहीं देता। ये वृंदावन में हम कहां बैठे हैं? भौतिक अवस्था में यदि दृष्टिपात करें तो न तो भगवान हमें वृंदावन का परिचय होता है, और वृंदावन में कहां बैठे हैं, हमारा बिंदु कहां है, हम कौन से स्थान पर, वो भी नहीं बता पाते। इतनी नगण्य अवस्था और इतने सारे 70 किलोग्राम के शरीर में मैं एक बाल के आगे का 10,000वां भाग जैसा मेरा अस्तित्व है, वो भी कहां दिखाई देगा? तो ये सारे भौतिक सृष्टि जो सिर्फ 25% है, तो उसको त्रिपाद विभूति जो 75% है उसका ख्याल कैसे आए? यानी कि अचिंत्यस्तु खलु भाव तामस्तर्केन योजय, जो अचिंत्य है वो तर्को या आर्ग्यूमेंट से हल नहीं होता। शास्त्र प्रमाण, साधु प्रमाण यानी कि परंपरा का प्रमाण और अपने गुरु का प्रमाण लेकर चलना। तो ये श्लोक काफी महत्वपूर्ण है, और हम इन चीजों को जरा ध्यान पूर्वक समझे, न समझ में आए तो प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण। हाँ भगवान के चार पांव नहीं है, इसलिए नहीं करा। त्रिपाद विभूति एक पाद, पद्म पुराण में पाद शब्द अवस्था का बताया है। आधार सृष्टि दो प्रकार की है, एक सनातन सृष्टि है, दूसरी भौतिक सृष्टि है जो आने और जाने वाली है। सनातन सृष्टि हमेशा बनी रहती है, तो ये है यानी उसकी अवस्था है, ऐसे नहीं कि नहीं। तो जैसे चरक स्थिर करते हैं ऐसी भावना को, चरण ही तो स्थिर करने वाला, चरण पर ही सारा आधार होता है। तो ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति जिसमें सांदिनी शक्ति भगवान की उपस्थिति को प्रकट करने वाली, ये शक्ति का आविर्भाव बलराम जो है वो अनंत भी कहलाता है, और पाद शब्द यानी कि इनका आधार, पाद यानी आधार, तो सारे अस्तित्व का आधार चार भागों में बटा गया है। तीन भाग आध्यात्मिक सृष्टि का है और एक भाग भौतिक का, जिसमें हम फंसे।
चैप्टर के अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मचारी और सन्यासी
सही, ब्रह्मचारी और सन्यासी यदि भक्त ना हो तो उनको ये व्यवस्था पता नहीं चलता। जब भक्त नहीं, ऐसे भी तो अभक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी होते हैं, अभक्त भी तो होते हैं। हाँ जी बोलो। भगवान की, भगवान इनके ईश बताए गए हैं, इनके नियंता नियमता है। तो नारायण परोपेक्षात्म कुतश्चन विद्यति, भगवान परम पुरुष परोपेक्षा, इनकी उपस्थिति व्यक्त उपस्थिति है, जिन नारायण की कृपा से ही निर्भयता प्राप्त होती है। इसलिए भक्त ये समझता है कि क्योंकि नारायण ही परम पुरुष है, इसलिए वो किसी से या किसी परिस्थिति से डरता है। स्वर्गापि नरकेषु तुल्यार्थे उदर्शी, ये निर्भयता में सब तुल्य मानता है। स्वर्ग में यानी कि भौतिक स्वर्ग की बात है, अध्यात्म में तो स्वर्ग नहीं, भगवान का ही धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामं परमं मम, अध्यात्म जगत की यह कितनी प्रशस्ति की गई है। तो सारा भगवान का यश सारे आध्यात्मिक अवस्था में इतना फैला ही है जो तीन गुना है। हम यश नहीं जाते भगवान के, क्योंकि हम अपने यश के लिए आते हैं भौतिक संसार में। तो 25% वाले जो अपने ही यश के लिए जी रहे हैं, वो भगवान के तीन गुना यश की पहचान कैसे कर सकते, क्योंकि तो कल्पना कैसे कर सकते। भक्ति का परिणाम, लेकिन ये भगवान जब अपने आशीर्वाद देते हैं भक्तों पर, तो ये दो लक्षण प्राप्त होंगे। लास्ट क्वेश्चन,
भौतिक सुख के बारे में आप बता रहे थे, जैसे इसमें कोई दम नहीं है, सब लोग इसके पीछे पागल है, लेकिन जब हम ऐसे लोगों को बता दें प्रचार में, लोग ऐसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि दुनिया में इतने सारे लोग सुखी हैं और बड़े बड़े धनी लोग हैं, अभिनेता है या कोई क्रिकेट प्लेयर हो, ये लोग तो बहुत सुखी हैं, और वो ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान तो परम पिता है, वो चाहते हैं कि सब उनके पुत्र जो जीव है सुखी रहे और हमें सुखी में है, तो फिर क्या खराब है।
इनको आशीर्वाद देना राजपुत्र चिरंजीव। इनको कहना ऐसे आशीर्वाद जो प्रभुपाद जी ने दिए थे चार अलग अलग प्रकार के व्यक्ति को, तो जो भौतिक आनंद भोग के लिए ही सुख की कल्पना और भगवान को भी उसी तरह नापतोल करता है, उसमें भगवान का यशोगान तो नहीं, लेकिन वो कल्पना करता है अपने सीमित थोड़े से सुख को प्राप्त करके, तो उसे कहना कि ये सुख तुम्हें क्या देगा। तो राजपुत्र चिरंजीव, एक राजा का बेटा आया तो एक ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि तू बेटा चिरंजीव हो। दूसरा एक मुनि का बेटा आया तो उसने आशीर्वाद दिए, ए मुनि पुत्र मां जी हो, तो अभी मर जा। और तीसरा आया एक भक्त साधु, साधु जीवो मां मरो, तो जी या मत तेरी इच्छा में आए वो कर। और चौथा आया एक कसाई, मां जीव मां मर थी न तू जी न मर। तो इनके शिष्य बैठे थे, कहा महाराज जी इसका भेद बताओ जरा, चार प्रकार के लोगों को क्यों ऐसे अलग अलग आशीर्वाद दिए, क्या महत्ता है इसकी। तो कहते कि ये राजपुत्र ऐश आराम से जीना चाहता है, क्योंकि उसके आसपास वो ही दिख रहा है और उसका लक्ष्य भी यही है। तो वैसे जीवन तो बहुत छोटा है और जितना ऐश आराम करेगा उतनी मृत्यु नजदीक आएगी, तो उसे कहो बेटा जल्दी जितना भोग ले इतना ले ले और जीते जी जितना जी, लेकिन मरने वाला है तुरंत। फंसने वाला है, परेशान होने वाला है, इसीलिए तो चिरंजीव। यानी कि चिरंजीव कोई आशीर्वाद नहीं, वो तो श्राप है। राजपुत्र तू चिरंजीव, लोग तो कुछ के हाँ साधु ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया है, लेकिन देखो क्या हालत है, चिरंजीव बनेगा तो फंसेगा। मुनि पुत्र तो छोटी अवस्था में तेरे पिता के साथ तपश्चर्या कर रहा, तपश्चर्या तो पवित्रता का साथ, तू तो निर्बोध तो है ही, फिर से ऊपर से तपश्चर्या कर रहा। बच्चे लोग में कोई दोष नहीं होता, वो तो 12-13 साल के बड़े होते हैं तब दोष पैदा होते हैं। तो ये छोटा बच्चा पिता के साथ, मुनि का पुत्र है, मुनि भी ध्यान लगाता है मुक्ति के लिए लगाता है, और ये छोटा लड़का निर्दोष अभी से ध्यान लगाने लगा, अरे बेटा तुरंत मर जा क्योंकि तू मुक्त हो जाएगा, तुझे बड़े होने की आवश्यकता ही क्या है, मुक्ति के लिए तू कर रहा है ये सब, तो मुक्ति अभी दे जाता हूं, तो मरते ही तुरंत मुक्त हो जाएगा, जान मर जा। कितने बड़ी आशीर्वाद है। लेकिन ये साधु है यानी कि भक्त है, तो भक्त जीते जी की सेवा करेगा, मरते के बाद भी उसकी सेवा जो सनातन धर्म है वो चालू ही रहेगी। तो मां जीवो बाबर ना, ना तो साधु जीवो बाबर होगा, तो चाहे जी या मर। और जो चौथा है कसाई, कसाई तो मृत्यु के सामने जी रहा है, वो क्या जीना है, मरा हुआ है, तो खुद कसाई घर में तू ही मरा है, तो न तो मरता है न जीता, न मरेगा क्योंकि उसकी दमन तो चालू है, फेफड़े चालू है, लेकिन जीने के लिए या मरने के लिए वो ही पता नहीं चलता, इसलिए न तो जी न मर। तो ऐसे आशीर्वाद भी है। तो जो भौतिकवादी है, जो सुखी अपने को मानते हैं, तो उसमें भगवान ने सही किया है, ओ चलो ठीक है, लेकिन दुख के लिए हम कोशिश नहीं करते, उसको बचने के लिए प्रयत्न करना है, तो साधु नहीं बल्कि तो राजपुत्र बनेंगे, तो राजपुत्र को तो ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीव खुश रहो। हरे
परम पूज्य वेद व्यास प्रिय महाराज की जय।